आठवें स्कंद के छठे अध्याय का चर्चा है, जिसका शीर्षक है देवताओं तथा असुरों द्वारा संधि की घोषणा। इसके श्लोक को दोहराइए। श्री ब्रह्मोवाच अजात जन्म स्थिति संयमाय गुणाय निर्वाण सुखार्णवाय अणोरणिन्ने परिगण्य धाम्ये महानुभावाय नमो नमस्ते। श्री ब्रह्मोवाच अजात जन्म स्थिति संयमाय गुणाय निर्वाण सुखार्णवाय अणोरणिन्ने परिगण्य धाम्ये महानुभावाय नमो नमस्ते। श्री ब्रह्मोवाच अजात जन्म स्थिति संयमाय गुणाय निर्वाण सुखार्णवाय अणोरणिन्ने परिगण्य धाम्ये महानुभावाय नमो नमस्ते। ब्रह्मा जी ने कहा अजात जन्म स्थिति संयमाय, भगवान को जो कभी उत्पन्न नहीं होते किंतु जिनका विविध अवतारों में प्राकट्य कभी बंद नहीं होता, अगुणाय प्रकृति के तीनों गुणों से कभी भी प्रभावित नहीं होने वाले, निर्वाण सुख अर्णवाय भौतिक सृष्टि से परे शाश्वत आनंद के सागर को अणु अनिन्य अणु से भी छोटे अपरिगण्य धाम ने जिनके शारीरिक स्वरूप की अनुभूति भौतिक चिंतन से नहीं की जाती, महानुभावाय जिनका अस्तित्व अचिंत्य है, नमः नमस्कार, नमः फिर से नमस्कार, ते आपको। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। ब्रह्मा जी ने कहा, यद्यपि आप अजन्मा हैं, किंतु अवतार के रूप में आपका प्राकट्य तथा अंतर्धान होना सदैव चलता रहता है। आप सदैव भौतिक गुणों से मुक्त रहते हैं और सागर के समान दिव्य आनंद के आश्रय हैं। अपने दिव्य स्वरूप में नित्य रहते हुए आप अत्यंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं। अतएव हम आपको, जिनका अस्तित्व अचिंत्य है, सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य, भगवद गीता में भगवान कहते हैं, अजोपि सन्न व्यय आत्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। यद्यपि मैं अजन्मा हूं और मेरा दिव्य शरीर कभी नष्ट नहीं होता, यद्यपि मैं सारे सचेतन जीवों का स्वामी हूं, फिर भी मैं प्रत्येक युग में अपने मूल दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। भगवद गीता के निम्नलिखित श्लोक में भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म का प्राधान्य हो जाता है, तब तब हे भारत मैं स्वयं अवतरित होता हूं। इस तरह यद्यपि भगवान अजन्मा हैं, किंतु कृष्ण तथा राम जैसे अवतारों के विविध रूपों में प्रकट होते रहते हैं। क्योंकि उनके अवतार नित्य हैं, अतएव इन अवतारों द्वारा संपन्न किए गए कार्यकलाप भी नित्य होते हैं। भगवान का प्राकट्य इसलिए नहीं होता कि सामान्य जीवों की तरह उन्हें कर्म के द्वारा बाध्य होकर विशेष शरीर धारण करना होता है। यह समझना होगा कि भगवान का शरीर तथा उनके कार्यकलाप दिव्य हैं, क्योंकि वे भौतिक प्रकृति के गुणों के कलमश से मुक्त होते हैं। ये लीलाएं भगवान के लिए दिव्य आनंद हैं। अपरिगण्य धाम में शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान द्वारा विभिन्न अवतारों में प्रकट होने की कोई सीमा नहीं है। ये सारे अवतार सच्चिदानंद स्वरूप होते हैं। ओम ज्ञानतिमिरांध्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललितं। ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वशास्त्राधिपीयूषः सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राणः श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तो दिदादित्या श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते मदेकबंधो मत्संगी मद्गुरौ मन्महाधना मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते असाधु साधु तदाई अतिनीचोचतः कर हानमुंच कदाचिन्मा प्रेरणारुत्कंठयोस्फुरा हरे कृष्णा। पिछले अध्याय में हम लोगों ने देखा कि कैसे इस समुद्र मंथन की लीला को अब प्रारंभ होना है, तो चर्चा हम लोग कर रहे थे कल कि कैसे इंद्र ने अपमान किया दुर्वासा मुनि का, और क्योंकि एक वैष्णव का अपमान हुआ ऐश्वर्य के अहंकार में आकर, और फिर उनका सारा ऐश्वर्य जाता रहा, शत्रुओं से हार गए, और अब सारे देवता ब्रह्मा जी को लेकर क्षीर सागर के तट पर वहां पहुंचे हैं, श्वेत द्वीप में प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। ब्रह्मा जी ने कल प्रार्थनाएं की, तो अब आगे आज के अध्याय में ये वर्णन है कि कैसे भगवान प्रकट हुए। तो पहले 7 श्लोकों में भगवान के प्राकट्य और उनके सौंदर्य का वर्णन है कि भगवान कैसे सबके सामने प्रकट हुए, क्या हुआ और कैसा सुंदरता है भगवान की। तो जब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना पूरी कर ली तो भगवान अब प्रकट हुए देवताओं के सामने, और ऐसा वर्णन है कि जब भगवान प्रकट हुए ये शिरोदक्षाई विष्णु हैं जो प्रकट हो रहे हैं। जब हम लोग कहते हैं भगवान प्रकट हुए श्वेत द्वीप में ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं के द्वारा, तो एक शिरोदक्षाई विष्णु हैं। तो जैसे ही प्रकट हुए सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि मानो हजारों सूर्य एक साथ चमक रहे, इतनी तेज भगवान के शरीर से निकला था हजारों सूर्य। अभी हम लोग एक सूर्य यहां पर होता है, हम लोग उसको सीधे देख नहीं पाते, ये सूर्य का तेज है, और आप सोचिए कि अगर हजारों सूर्य एक साथ चमकेंगे तो आंखें खोल नहीं पाएंगे। और वही हुआ देवताओं के साथ, जैसे ही भगवान प्रकट हुए देवता देख नहीं पाए, आंखें सबकी बंद हो गई, इतना तेज इतना प्रकाश हुआ। दो अवस्थाओं में व्यक्ति कुछ देख नहीं पाता है, एक जब अंधकार होता है और दूसरा जब बहुत तेज प्रकाश होता है। अर्थात जब व्यक्ति अज्ञान में होता है तब उसको कुछ दिखाई नहीं देता है इस जगत का, और जब वो पूर्ण ज्ञान में होता है तब भी उसको इस जगत का कोई दिखाई कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो कृष्ण भावनामृत में होता है। तो इसीलिए एक व्यक्ति जो अज्ञान में है वो भी अंधा है, दूसरा व्यक्ति जो पूर्ण ज्ञान में वो भी अंधा है। एक व्यक्ति अज्ञान के कारण अंधा है अर्थात इस जगत को सत्य मान रहा है, दूसरा व्यक्ति ज्ञान के कारण अंधा है इस जगत को असत मान रहा है। तो देवताओं के सामने जब भगवान प्रकट हुए, आंखें बंद हो गई, देख नहीं पाए, फिर कुछ समय बाद ब्रह्मा जी और शिव जी ने भगवान के रूप को देखा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, और कैसा रूप था भगवान का, बहुत सुंदर रूप। वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी की, उनका श्याम वर्ण था। जब भगवान का ये श्याम वर्ण कहा जाता है तो कई बार लोग उन्हें काला कहते हैं, है ना, कृष्ण काले हैं, कृष्ण श्याम वर्ण के हैं, घनश्याम काले बादलों की तरह, तो कृष्ण काले हैं। दरअसल कृष्ण काले नहीं हैं, घनश्याम या श्याम वर्ण उपनिषदों में इसका उल्लेख किया गया है कि ये वो वर्ण है जो सभी रंगों से मिलकर बनता है, या दूसरे शब्दों में कहना चाहिए जो सभी रंगों का, सभी वर्णों का या रंग का स्रोत है वो श्याम रंग है या श्याम वर्ण है। इस जगत में हम लोग कुछ 6-7 रंगों को मिलाकर जब ऐसे घुमाते हैं तो सफेद हो जाता है, लोग कहते बस इतने ही रंग है, यही उनके अनुसार है, क्योंकि उनको यही पता है 6-7 रंग, विग्योर, वॉयलेट, इंडिगो ब्लू इत्यादि। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत से रंग हैं जिन रंगों को हम जानते नहीं हैं, उन सब रंगों से मिलकर श्याम वर्ण बनता है। तो श्याम वर्ण सभी रंगों का स्रोत है, जैसे भगवान सभी आनंद के स्रोत हैं, सभी चीजों के स्रोत हैं, अहम सर्वस्य प्रभव। जब भगवान ये कहते हैं तो उसमें रंग भी आता है, तो सारे रंग भगवान से आते हैं। तो श्याम वर्ण, और फिर पीतांबर धारण किया हुआ था, पिघले हुए सोने के समान उनके वस्त्र हैं। जब पीतांबर कहा जाता है तो पीला नहीं मानना चाहिए, फिर से ये हम लोगों को केवल एक दृष्टांत देने के लिए बताया जाता, नहीं तो हम समझेंगे कैसे श्याम रंग क्या है। तो बता दिया जाता है कि घनश्याम बादलों की तरह है, घने बादलों की तरह है, पीला रंग, पीत वस्त्र पहनते हैं। लेकिन ये सारे रंग हमारे लिए समझना संभव नहीं है, क्योंकि ये आध्यात्मिक रंग है, लेकिन फिर भी हमें एक अंदाजा देने के लिए बताया जाता है। जैसे कभी कभी इस जगत में कोई बहुत सुंदर होता है तो उसकी तुलना की जाती है कि उसका चंद्रमा के समान मुख है। अब चंद्रमा के समान थोड़ी ना उसका मुख है, ये तुलना दी जाती है, अर्थात बहुत सुंदर है। तो इसी तरह ये उपमाएं दी गई हैं श्री कृष्ण के लिए, भगवान के लिए। तो पिघले हुए सोने के समान उस रंग के उनके वस्त्र हैं, बहुत सुंदर उनकी आंखें हैं। उनकी आंखों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वो कमल के समान हैं और लाल रंग के कमल के समान। जैसे कमल होता है, आप लोग यहां देख रहे हैं भगवान को अर्पण किया गया कमल है, तो लाल रंग का जो कमल होता है भगवान की आंखें हैं, इससे पूरी कमल की पंखुड़ी के समान उनकी आंखें, बहुत सुंदर आंखें हैं भगवान की, बहुत बड़ी, जैसे हमारी आंखें यहां तक होती हैं, लेकिन भगवान की पूरी बड़ी आंखें कमल की पंखुड़ी की तरह, तो इसीलिए इनको कमल नयन कहा जाता है। तो बहुत सुंदर आंखें हैं, और फिर ब्रह्मा जी उनकी मुस्कान देखते हैं, बहुत सुंदर उनकी मुस्कान है। भगवान जब मुस्कुराते हैं तो बहुत कुछ होता है, ऐसा वर्णन है कि भगवान की मुस्कान देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने तपस्या को खो बैठते हैं। भगवान अभी आगे जब आएंगे मोहिनी के रूप में, एक मुस्कान देंगे तो सारे जितने असुर हैं वो सब जो कहो वो कहने के लिए तैयार। भगवान की मुस्कान ऐसे ही है। तीसरे स्कंद में सुखदेव गोस्वामी ने भगवान की मुस्कान का इस भौतिक जगत में वर्णन किया है कि भगवान की मुस्कान कैसी है इस भौतिक जगत में। जब वो विश्वरूप का वर्णन करते हैं तो विश्वरूप का वर्णन करते करते वो भगवान की मुस्कान का वर्णन करते हैं और वो कहते हैं हासो जन उन्माद करीच माया। भगवान की हंसी या भगवान की मुस्कान क्या है? जन उन्माद करीच माया, वो माया जो जन उन्माद हर व्यक्ति को पागल बना देती है वो है भगवान की मुस्कान। तो ऐसे भगवान की सुंदर मुस्कान को देखा, उनके आंखों को देखा, उनके वस्त्रों को देखा, उनके सुंदर वर्ण को, उनके सुंदर रूप को देखा, कौस्तुभ मणि इत्यादि उनको देखा। तो ऐसे जब भगवान के दर्शन कर लिए तो अब आठवें श्लोक से पंद्रहवें श्लोक तक ब्रह्मा जी अब प्रार्थना अर्पण करेंगे। पहले सात श्लोकों में भगवान के सुंदरता का वर्णन हो गया, अब ब्रह्मा जी भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण करेंगे। देखिए, पहले ब्रह्मा जी ने प्रार्थना अर्पण की जब भगवान प्रकट नहीं हुए थे, वो प्रार्थनाएं थी कि आप प्रकट हो जाइए, आप कुछ कीजिए, और अब भगवान को देखकर फिर से प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं। भगवान को देखकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हो गए और इसीलिए वो प्रार्थना करने लगे, जैसे इस प्रार्थना में वो करते हैं कि आप अजन्मा हैं लेकिन फिर भी आप प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं, अलग अलग अवतार लेते हैं। ये भगवान के जन्म की दिव्यता है। भगवान अजन्मा है लेकिन जन्म लेते हैं। भगवान असीमित हैं लेकिन सीमित हो जाते हैं, एक बहुत सुंदर रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। कभी कभी लोग ये मानते हैं कि भगवान रूप ले नहीं सकते, क्योंकि जो भी रूप लेते हैं वो सृष्टि मानी जाती है, मतलब वो बन चुके हैं, सृष्टि करता नहीं है। अर्थात लोग मानते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, वो तो असीमित हैं, निर्गुण निराकार ब्रह्म, और केवल वो इस भौतिक जगत में जब आते हैं तो एक भौतिक रूप ले लेते हैं। नहीं, ब्रह्मा जी ऐसी बात नहीं कहते। ब्रह्मा जी कहते हैं आप अजन्मा हैं लेकिन आप अवतार लेते हैं, दिव्य अवतार हैं आपके, जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान के अवतार, भगवान के रूप दिव्य हैं, इसीलिए इन्हें भौतिक नहीं माना जाता। तो भगवान जब प्रकट होते हैं, जब वो अपने आप को समक्ष भक्तों के समक्ष लाते हैं, तो ऐसे ब्रह्मा जी अब कह रहे हैं कि आप हालांकि अजन्मा हैं लेकिन फिर भी आप अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। तो भगवान के सारे अवतार दिव्य स्वरूप हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान का एक अवतार दिव्य है, आध्यात्मिक है, कोई भौतिक है, नहीं, भगवान के सारे अवतार आध्यात्मिक और दिव्य हैं। तो ऐसे वो भगवान की प्रार्थना करते हैं, फिर वो आगे कहते हैं कि जो लोग बड़े भाग्यवान हैं वे आपके रूप की पूजा करते हैं। ये ब्रह्मा जी कहते हैं, अर्थात जो लोग भगवान के रूप को नहीं मानते बड़े बड़े दुर्भाग्यशाली हैं, जो ये मानते हैं कि भगवान का रूप नहीं है। जो भाग्यवान हैं वही केवल आपके रूप की पूजा कर पाते हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अर्थात वही समझ पाते हैं आपको आपके भगवान रूप में, अन्यथा बाकी लोग तो केवल आपको समझ नहीं पाते, ज्ञान नहीं है। और ब्रह्मा जी इस बात को कहते हैं और फिर आगे ब्रह्मा जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं इस भौतिक जगत में रहते हुए भी भक्त आपको प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं है कि भक्त को आध्यात्मिक जगत जाना है आपको प्राप्त करने के लिए, इसी भौतिक जगत में रहते हुए प्राप्त कर सकता है। कैसे? वो उदाहरण देते हैं, जैसे लकड़ी से आग को प्राप्त किया जाता है, लकड़ी से कुछ क्रिया कीजिए अग्नि प्रकट हो जाती है। जैसे गाय से दूध को निकाला जाता है, गाय के थनों में दूध होता है लेकिन उसको निकालना पड़ता है, तो जैसे अग्नि निकाली जाती है लकड़ी से, जैसे गाय से दूध निकाला जाता है, इसी प्रकार भक्ति के अभ्यास से इसी भौतिक जगत में आपको प्राप्त किया जा सकता है, ब्रह्मा जी कहते हैं। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि कुछ प्रक्रियाएं, जैसे पृथ्वी है, उसमें से अन्न निकाला जाता है, गाय से दूध निकाला जाता है, लकड़ी से अग्नि निकाली जाती है, इसी तरह भक्ति के अभ्यास के द्वारा हम भगवान को निकाल सकते हैं, कहना चाहिए, या प्राप्त कर सकते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में जैसे ही अब ब्रह्मा जी ने कहा कि गाय का दूध निकालते हैं, तो प्रभुपाद कहते हैं सादा जीवन। प्रभुपाद कहते हैं कि देखिए, बड़ा सरल है जीवन जीना। अगर किसी के पास गाय है, गाय का दूध निकालें और बड़े आराम से रह सकते हैं। वो एक सरल फॉर्मूला देते हैं सादा जीवन का। प्रभुपाद कहते हैं कि जमीन से पानी निकालिए और उससे फिर आप खेती कीजिए, खेती से आपको कुछ अन्न इत्यादि आएगा, उससे आप गायों का पालन कीजिए, गायों से आपको दूध आएगा, तो दूध और जो फल फूल आपने या सब्जियां आपने बनाई हैं, उगाई हैं, उनको मिलाकर अच्छे अच्छे पकवान बनाइए, सुखी जीवन जिए। क्या जरूरत है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की, सादा जीवन। अब हम लोग इस समय में हैं, जब सादा जीवन कहा जाता है तो हमारे मन में एक ही विचार आता है, एक ही चित्र आता है, गरीब आदमी, है ना। सादा जीवन मतलब गरीब आदमी, क्योंकि अमीर आदमियों के तो सादे जीवन हो ही नहीं सकते। ये गलत धारणा है। सादा जीवन का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति गरीबी में जिए, जंगल में जिए, खेतों में जिए, बस वही सादा जीवन नहीं। पांडवों की बात अगर हम लोग करें महाभारत में, तो वो तो महलों में रहते थे, इतने बड़े भक्त हैं, वो महलों में रहते थे, सारे ऐश्वर्यों के बीच रहते थे, तो क्या उनका जीवन सादा नहीं था? क्या उनका जीवन सादा नहीं था? ऐसा कैसे हो सकता है, भक्त हैं तो जीवन सादा होगा। तो इसीलिए सादा जीवन क्या है इसको समझना चाहिए। सादा जीवन का अर्थ ये नहीं है कि गरीबी में जीना। सादा जीवन का अर्थ है अपनी आवश्यकताओं को कम करना और ऊंचे विचारों को ज्यादा पलने के लिए समय देना। तो सादा जीवन का अर्थ है ऊंचे विचारों के लिए समय होना। ऐसा नहीं कि हम इतना व्यस्त हैं अपने कार्य में, अपने व्यापार में, अपने जीवन में, कि ऊंचे विचारों के लिए समय नहीं है हमारे पास। तो सादा जीवन, ऊंचा विचार, ये जरूरी है। केवल सादा जीवन जीकर कोई लाभ नहीं है, ऊंचे विचार होने चाहिए। अर्थात सादा जीवन मतलब अपनी आवश्यकताओं को कम करके उतना समय ऊंचे विचारों को दें। ऊंचे विचार अर्थात भगवान की भक्ति, भागवत का श्रवण करना, भगवत गीता का श्रवण करना, भगवान की सेवा करना, भगवान के नाम को कहना, इसका समय होना चाहिए, तब हमारा जीवन सादा है, नहीं तो बहुत जटिल है जीवन। अगर कोई गांव में रहकर भी भगवान के नाम को नहीं ले रहा, तो उस सादे जीवन का क्या लाभ है? तो सादा जीवन मतलब केवल गांव का जीवन नहीं, सादा जीवन मतलब जहां ऊंचे विचारों के लिए समय हो। सादा जीवन का अर्थ है हम अपनी आवश्यकताओं के लिए जिए, आवश्यकताओं को कम करें और केवल उनका जितना आवश्यक है उसके लिए हम प्रयास करें, आवश्यकताओं को बढ़ाएं नहीं। इस भौतिक समय में, इस आधुनिक समय में हम लोग देख रहे हैं कि लोगों ने अपनी आवश्यकताओं को बहुत बढ़ा दिया, और जितना आवश्यकताओं को बढ़ाते हैं उतना ज्यादा वो सादे जीवन, उच्च विचार से दूर चले जाते हैं और फिर धीरे धीरे पथभ्रष्ट हो जाते हैं। इसीलिए सरल जीवन मतलब जितना आवश्यक है जीवन जीने के लिए उतना कार्य किया जाए, बाकी समय भगवान की भक्ति में लगाया जाए, ऊंचे विचारों में लगाया जाए, ये आवश्यक है। इसको सादा जीवन, उच्च विचार कहा जाता है। तो कैसे हम जी सकते हैं सादा जीवन? जितना ज्यादा हम उच्च विचारों पर ध्यान देंगे, अपने आप सादा जीवन आएगा। हमें कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा उच्च विचारों पर ध्यान दें, अर्थात हम ये जाने कि कैसे भगवान को प्राप्त करना है, कैसे भक्ति करनी है, धीरे धीरे जब इसमें आगे बढ़ेंगे तो भौतिकता की जितनी आवश्यकताएं हैं वो अपने आप कम हो जाएंगी। अपने आप हमारे हृदय से भौतिक भोग करने की इच्छा चली जाएगी, अपने आप सरल जीवन आएगा। इसीलिए सरल जीवन को जीना बहुत आवश्यक है। किस तरह से हम लोग सादा जीवन अपना जिए, हमें सादे जीवन का आधार आवश्यकता होनी चाहिए, लोभ नहीं। लोभ की कोई सीमा नहीं है। अगर आप लोभ के लिए कार्य कर रहे हैं तो आप जीवन भर कार्य करते रहेंगे, लेकिन अगर आप आवश्यकताओं के लिए कर रहे हैं, जैसे प्रभुपाद इस पे लिखते हैं, क्या जरूरत है, सरल चीज चाहिए, खाने के लिए कुछ, खाने के लिए हमें कुछ सब्जियां चाहिए, फल चाहिए, पीने के लिए दूध चाहिए, बस इतना ही, क्या आवश्यकता है बाकी किसी चीज की। तो सादा जीवन होना चाहिए, तो इसकी यहां पर प्रभुपाद करते हैं। आज के समय में वैसे भी हम लोग इतने सारे अलग अलग प्रकार की चीजों से घिरे हुए हैं जो हमें बड़ी आसानी से सादे जीवन से परे ले जा सकते हैं। तो इसीलिए इस समय में बहुत आवश्यक है कि ऊंचे विचार को बनाए रखें। जितने भी बाहरी आकर्षण हैं ये हमारे मन को नियंत्रित नहीं होने देते। हम किस तरह की चीजें सुनते हैं, क्या देखते हैं, जैसे सिनेमा देखना, नॉवेल पढ़ना, गाने सुनना, गाने गाना, ये सब हमारे मन को नियंत्रित केंद्रित नहीं होने देते और इसीलिए सादा जीवन आ नहीं सकता। तो सरल क्या है, इन चीजों से परे रहकर उच्च विचारों पर केंद्र करना। तो इसको प्रभुपाद बहुत से स्थानों पर सादा जीवन उच्च विचार के लिए कहते हैं कि हमें सरल जीवन जीना चाहिए। तो ऐसे फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, जब उन्होंने कह दिया कि आपको भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है, तो आगे वो वर्णन करते हैं कि किस तरह जब भक्त आपको देखते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रभुपाद यहां लिखते हैं कि भक्त कामना करते हैं भगवान को देखने के लिए, लेकिन भगवान से वो आदेश नहीं देते भगवान को कि आपको हमारे सामने आना ही होगा, तो वो इंतजार करते हैं। जब भगवान की इच्छा होगी भगवान अपने आप को प्रकट करेंगे हमारे सामने। तो इसीलिए ये सोचना कि मुझे भगवान को देखना है, भगवान को देखना है, अच्छा है, हृदय में होनी चाहिए भावना, लेकिन हमें उसके लिए भगवान को बाध्य नहीं करना है कि भगवान को आना ही होगा, हमें इंतजार करना चाहिए, जब भगवान की इच्छा होगी भगवान हमें दर्शन देंगे। तो ऐसे ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप प्रकट होते हैं तो भक्तों को आनंद आता है आपको देखकर। और फिर आगे वो कहते हैं कि आप तो सब कुछ जानते हैं, अब ये नहीं कह रहे कि अब बताइए क्या करना है, ऐसी ऐसी समस्या, आप सब जानते हैं, तो इसीलिए आप आगे बताइए क्या करना है, सब आप जानते हैं, हमें आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए जो सही हो, जो अच्छा हो देवताओं के लिए, वो कहिए। तो प्रभु का तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन केवल हमें क्या करना है, भक्ति में लगे रहना है, अपने कर्तव्यों को करते रहना है, सरल चीज, हमें कोई और प्रयास नहीं करना है, भगवान को सब पता है, केवल हमें भक्ति में लगे रहना, जो भी आना है अपने आप आएगा। जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि अगर कोई बड़ी गंभीरता से भगवान की भक्ति में लगा है तो सारी चीजें भगवान अपने आप देंगे, कोई उसको आवश्यकता नहीं है भगवान से मांगने की कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, भगवान अपने आप देंगे, केवल अपने कर्तव्य को करना। तो जब हम ये कहते हैं कि भगवान सब जानते हैं, उसी तरह आचरण भी करना चाहिए हमें कि जब भगवान सब जानते हैं तो उनसे क्यों मांगना, उनकी इच्छा होगी तो वो दे देंगे, नहीं इच्छा है तो आप मांगते भी रहोगे तो नहीं देंगे। कई बार लोग ऐसे कहते हैं कि वैसे तो जो चाहे भगवान वही होगा, लेकिन ऐसा हो तो ठीक है, जरूरत नहीं है। जब आप सोच रहे हो, जब आप जानते हो कि जो भगवान चाहेंगे वही होगा, तो उसको स्वीकार करो। फिर ये क्यों कहना कि ये होना चाहिए, आप ये कीजिए, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, भगवान ये हमें देने चाहिए, हमारे किसी प्रियजन की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, उनको बचा लीजिए। भगवान जो चाहेंगे होगा। अगर भगवान चाहते हैं कि आपके प्रियजन की मृत्यु होगी तो वो वैसे भी होने वाली है, कौन रोक सकता है। तो ये चीज कहना और उस पर विश्वास करना। तो केवल कहना पूर्ण नहीं है कि जो भी भगवान चाहेंगे वो होगा, हमें ऐसा आचरण करना चाहिए। केवल अपनी भक्ति में लगे रहना है, जो भी देना है वो भगवान देंगे। तो ऐसा कहने के बाद अब ब्रह्मा जी ने प्रार्थनाएं समाप्त की। तो 16वें श्लोक से लेकर आगे 25वें श्लोक तक भगवान देवताओं को उपदेश देते हैं, निर्देश देते हैं क्या करना है। तो अब देवताओं से भगवान ने कहना प्रारंभ किया। भगवान ने कहा कि मैं जो कह रहा हूं उसको सुनो और ये तुम्हारे लिए शुभ होगा। तो भगवान वैसे तो चाहते तो देवताओं की मदद कर सकते थे, असुरों को मारना कोई बड़ी बात नहीं है भगवान के लिए, लेकिन शिवदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान समुद्र मंथन की लीला करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने देवताओं से कहा कि देखो अभी काल बड़ा प्रभावी है और इस प्रभावी काल में अभी अच्छा है कि तुम जाकर संधि कर लो असुरों के साथ, अभी उनका विरोध नहीं करो, उनसे संधि करो। और भगवान एक उदाहरण देते हैं, याद है ना सर्प और चूहे का उदाहरण। कभी कभी शत्रु से संधि करनी चाहिए। तो सर्प और चूहे का उदाहरण प्रभुपाद समझाते हैं कि साधारणतः जो सांप है वो चूहे को खाता है। तो एक समय ऐसा हुआ कि एक जगह पर एक चूहा और सांप दोनों फंस गए एक बॉक्स में, एक डिब्बे में। तो उस समय सांप भी है वहीं, चूहा भी है। सांप चाहे तो चूहे को खा सकता था, लेकिन उसने खाया नहीं। उसने कहा चूहे से कि मैं तुम्हें कोई चीज नहीं, कोई चिंता नहीं, तुम्हें कोई कष्ट नहीं दूंगा, तुम इसको काटो, इसमें छेद बनाओ ताकि हम लोग दोनों बाहर निकल सकें। तो जब चूहे ने छेद बना दिया तो फिर सांप ने चूहे को भी खा लिया और छेद से बाहर भी निकल गया। तो इसको भगवान बता रहे हैं देवताओं को कि जैसे सांप ने उस समय खाया नहीं लेकिन संधि कर ली, ऐसे अभी आप देवताओं से संधि करो और जाओ और समुद्र का मंथन करो, क्षीर सागर का मंथन करो, बहुत सारी वनस्पतियां, बहुत सारे पेड़ पौधे उसमें डालकर फिर उसका मंथन करना। मंदार पर्वत को आप लकड़ी बनाना और वासुकी को रस्सी और उससे मंथन करना। और ये जान लो, देवताओं को जब उन्होंने मंथन का लिए कहा, उन्होंने एक चेतावनी दी कि जहर आएगा। भगवान सब जानते थे, भगवान ने कहा जहर आएगा, घबराना नहीं। और बहुत सारी अन्य चीजें आएंगी, लोभ नहीं करना। अब देखिए, जैसे हम कल बता रहे थे कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत सुंदर उपदेश है। तो जब मंथन होता है, मंथन मतलब हमारे विचारों का मंथन होता है, भक्ति में कई चीजों का मंथन होता है, आगे धीरे धीरे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो भगवान कह रहे हैं जहर आएगा, भक्ति करने जाएंगे, मंथन होगा तो जहर आएगा। जहर आएगा मतलब ऐसी चीजें जो भक्ति के विरोधी हैं, घबराना नहीं, उसको शांत किया जाएगा, भक्त उसको शांत कर देंगे। और बहुत सारी चीजें आएंगी, लोभी नहीं होना। जैसे व्यक्ति जब भक्ति करने लगता है तो उसको बहुत सारे ऐसी चीजें मिलती हैं जो उसके लिए आकर्षण है। जैसे एक भक्त को बहुत मान सम्मान मिलने लगता है, वो कुछ थोड़ा बहुत भक्त हो जाता है, कुछ अच्छा प्रवचन देने लगता है, लोग बहुत मान सम्मान देते हैं, वाह प्रभु जी क्या है। भगवान कहते हैं लोभी नहीं होना, आकर्षित नहीं होना, ये सब चीजें आएंगी। क्यों? अंत में अमृत आएगा, उसके लिए इंतजार करना। अर्थात भक्ति के अंत में जो कृष्ण भावना अमृत आने वाला है, कृष्ण भक्ति का, कृष्ण प्रेम का अमृत, उसके लिए अगर इंतजार करना है तो इन चीजों से आकर्षित नहीं होना चाहिए, विष से घबराना नहीं चाहिए, भक्ति में लगे रहना चाहिए। तो भगवान ने देवताओं को कहा बिल्कुल नहीं घबराना और लोभी नहीं होना, और जो भी असुर कहते उनकी बात को मान लेना, चिंता नहीं करना, जो भी वो कहे मान लेना। देवताओं ने कहा ठीक है। अब सब देवता ब्रह्मा जी शिव जी इत्यादि चले गए, बाकी सारे देवता बलि महाराज के पास आए। असुरों के राजा हैं बलि महाराज। तो जब देवता आ रहे थे तो जितने भी बलि महाराज के सेनापति इत्यादि थे उन्होंने तैयारी कर ली आक्रमण करने की, अब मारेंगे। लेकिन बलि महाराज ने देखा कि ये लोग युद्ध करने नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने सबको रोक दिया और उन्हें कोई नहीं मारेगा, आने दीजिए। बिठाया, बहुत अच्छे तरह से बात की। प्रभुपाद समझाते हैं कि शास्त्रों में कहा गया है कि अगर शत्रु भी घर पर आए तो उसका ऐसा स्वागत करना चाहिए कि वो अपनी शत्रुता को भूल जाए। शत्रु भी अगर शत्रु भी घर में आता है तो भूल जाए अपनी शत्रुता को, तो ऐसे उसका स्वागत करना चाहिए। बलि महाराज ने ऐसे इंद्र का स्वागत किया। फिर इंद्र ने बड़े नम्रता से बलि महाराज को प्रस्ताव रखा कि हम लोग समुद्र का मंथन करेंगे, मंदार पर्वत को लकड़ी बनाएंगे, वासुकी को रस्सी बनाएंगे और फिर उससे अमृत निकलेगा, तो हम लोग सब मिलकर इसका मंथन करेंगे। तो बलि महाराज ने उसको स्वीकार किया और सारे बाकी असुरों ने भी स्वीकार किया कि ठीक है मंथन होगा, हम लोग इसको स्वीकार करते हैं। तो फिर सब लोग गए मंदार पर्वत को उठाने के लिए। मंदार पर्वत को उन्होंने बड़ी मुश्किल से उठाया, ये सोने का बना हुआ है, बड़ा भारी है, सोना पत्थर से भारी होता है, इसीलिए पत्थर का पहाड़ से सोने का पहाड़ भारी है। तो मंदार पर्वत को उठाया, बड़ी मुश्किल से थोड़ी दूर लेकर आए लेकिन उठा नहीं पाए, शक्ति नहीं थी। सारे देवता असुर सब उठा रहे थे लेकिन उठा नहीं पाए, पटक दिया उन्होंने, और जैसे ही पटका तो उसके नीचे बहुत सारे देवता बहुत सारे असुर दस कर मर गए। तब क्या करें, फिर भगवान आए। भगवान गरुड़ पर सवार होकर आए और उन्होंने अपने एक हाथ से ऐसे मंदार पर्वत उठाकर गरुड़ की पीठ पर रख दिया। प्रभुपाद कहते हैं कई बार लोग इसको विश्वास नहीं करेंगे, अरे इतने सारे देवता उठा नहीं पाए थे, भगवान ने एक हाथ से उठा दिया। भगवान की असीमित शक्ति, इतने सारे ग्रहों को वो उठा रहे हैं चला रहे हैं, तो एक पर्वत उठाने की कौन सी बड़ी बात है। तो पर्वत को रख दिया, जितने लोग मरे थे देवता इत्यादि उन सबको पुनर्जीवित कर दिया, देवता और असुरों को, और सबको गरुड़ की पीठ पर बिठाकर फिर वो क्षीर सागर के तट पर लेकर आए और फिर गरुड़ ने बड़े धीरे से उस पर्वत को वहां रख दिया। तो अब मंथन होने वाला है और भगवान ने गरुड़ से कहा कि आप यहां से चले जाओ, मैं यहां रहूंगा आप नहीं रहना। तो क्यों चले जाओ, क्योंकि वासुकी को बुलाने वाले थे। वासुकी सर्प है और सर्प गरुड़ों का भोजन होता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि हालांकि गरुड़ जी भगवान के बड़े महान भक्त हैं लेकिन वो शाकाहारी नहीं है, वो सांपों को खाते हैं। तो बड़ी विचित्र बात है ना, हम लोग सोचते हैं ऐसा कैसे, हम लोग को कहा जाता है चार नियम पालन करो, मांसाहार नहीं करो, और गरुड़ जी इतने महान भक्त वो सांपों को खाते हैं, तो कैसे मानना चाहिए इसको। तो ये उनका स्वाभाविक भोजन है, ये कोई उनका अस्वाभाविक भोजन नहीं है। हमारे लिए मांस खाना अस्वाभाविक है, नेचुरल नहीं है, उनके लिए वो स्वाभाविक है, उनका तो वो भोजन है, प्रकृति के द्वारा नियत किया गया है। इसीलिए वो अगर सर्पों को खाते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है। जैसे एक शेर अगर किसी हिरण का शिकार करके खाता है तो उसको कोई पाप नहीं लगता। तो इसीलिए गरुड़ जी हालांकि भगवान के भक्त हैं लेकिन सर्पों को खाते हैं। तो इसीलिए वहां वासुकी को बुलाया जाना था, वासुकी आता नहीं अगर गरुड़ जी वहां होते, तो इसीलिए गरुड़ जी को कहा तुम जाओ बाद में आ जाना, बुलाऊंगा तुम्हें जब जरूरत हो। तो गरुड़ जी वहां से चले गए और अब समुद्र का मंथन प्रारंभ होना है। तो अगले अध्याय में वर्णन करेंगे कि कैसे क्षीर सागर का मंथन प्रारंभ हुआ, शिव जी ने कैसे जहर को पी लिया, ग्रहण किया। तो इसका वर्णन अगले अध्याय में होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। किसी के कोई प्रश्न?